सात क्वेश्चन भी चाहिए। पतला वाला हरे कृष्ण जय राधा माधव कुंज बिहारे जय राधा माधव कुंज बिहारे गोपी जानावाला विवर धारे गोपी जानावाला विवर धारे जय राधा माधव कुंज बिहारे यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीर बन चारे यमुना तीर बन चारे जय राधा माधव कुंज बिहारे जय राधा माधव कुंज बिहारे गोपी जानावाला भावरधारे गोपी जानावाला भावरधारे सोदनंदन भज जन रंजन सोदनंदन भज जन रंजन यमुना तीर बन चारे यमुना तीर बन चारे जय राधा माधव कुंज बिहारे गोपी जाना वाला भाई सोदनंदन भज जनरंजन जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाशदि गो भक्तवृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाशदि गौर भक्तवृंद Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Prabhupada, 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 Prabhupada. Jai Radha, Jai Radha, Jai Radha. Hare Ba. Hare Ba, Hare Ba, Hare Ba. Hare Ba, Hare Ba, Hare Ba, Hare Ba. Jai Om. शिवाने बेटे भक्त स्वामी श्री प्रभुपाद महाराज की ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय हरे कृष्ण सब भक्तों का हार्दिक स्वागत भगवतम दसवें स्कंध के दूसरे अध्याय का श्लोक नंबर 20 पढ़ा गया
तं वीक्ष्य कंसः प्रभया जितन्तराम् विरोचयन्तीं भवनं शुचिस्मिताम् आहेश मे प्राणहरो हरिर्गुहाम् ध्रुवं श्रितो यन्ना पुरेयमिदृशी तं वीक्ष्य कंसः प्रभया जितान्तराम् विरोचयन्तीं भवनं शुचिस्मिताम् आहेश मे प्राणहरो हरिर्गुहाम् ध्रुवं श्रितो यन्ना पुरेयमिदृशी
शब्दार्थ हो जाएंगे शब्दार्थ
शब्दार्थ ताम उस देवकी को वीक्षा देखकर कंसः उसके भाई कंस ने प्रभया उसके सौंदर्य और प्रभाव के बढ़ने से अजित अंतराम अजित या भगवान विष्णु को अपने भीतर रखने के कारण विरोचयंतिम प्रकाशित करती हुई भवनम घर के समूचे वातावरण को शुचि स्मिताम हस्ती हुई तथा तेजस्वी आह अपने आप कहा एषः यह परम पुरुष मैं मेरा प्राणहर मेरी जान लेने वाले हरि ही भगवान विष्णु ने गुहाम देवकी के गर्भ में ध्रुवम निश्चित रूप से श्रितः शरण ली है यत क्योंकि न नहीं थी पुरा पहले यम देवकी इदृशी इस तरह अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा गर्भ में भगवान के होने से देवकी जिस स्थान में बंदी थी वहां के सारे वातावरण को वे आलोकित करने लगी उसे प्रसन्न शुद्ध तथा हसमुख देख कर कंस ने सोचा इसके भीतर स्थित भगवान विष्णु अब मेरा वध करेंगे इसके पूर्व देवकी कभी भी इतनी तेजवान तथा प्रसन्न नहीं दिखी तात्पर्य भगवान ने भगवद गीता में कहा यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम् हे भरतवंशी जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की प्रधानता हो जाती है तब तब मैं अवतार लेता हूं इस युग में संप्रति मानव कर्तव्यों के पालन में असाधारण गलतियां हो रही हैं मानव जीवन ईश साक्षात्कार के निमित्त है किंतु दुर्भाग्यवश भौतिकवादी सभ्यता शरीर के इंद्रियों पर जोर देती है शरीर के भीतर की प्राण शक्ति को समझने पर नहीं जैसा कि भगवद गीता में स्पष्ट कहा गया है देहिनो अस्मिन् यथा देहे, शरीर के भीतर शरीर का स्वामी प्राण शक्ति है जो अधिक महत्वपूर्ण है, किंतु मानव समाज इतना पतित हो चुका है कि शरीर के भीतर की प्राण शक्ति को न समझकर मनुष्य बाहरी वस्तुओं में व्यस्त रहता है। मानव कर्तव्यों में यह एक त्रुटि है, इसलिए कृष्ण ने कृष्ण भावनामृत आंदोलन के गर्भ में जन्म या शरण ले रखी है। इसलिए कंस जैसे लोग अत्यंत भयभीत हैं और इस आंदोलन को विशेष रूप से पश्चिमी देशों में रोकने में लगे हुए हैं। एक राजनीतिज्ञ ने तो यहां तक कहा कि कृष्ण भावना अमृत आंदोलन महामारी की तरह फैल रहा है और यदि इसे तुरंत नहीं रोका गया तो यह 10 वर्षों में सरकारी शक्ति को हत्या सकता है। निसंदेह कृष्ण भावना अमृत आंदोलन में ऐसी शक्ति है, जैसा कि अधिकृत लोगों ने कहा है, कलिकाले नाम रूपे कृष्ण अवतार। इस युग में कृष्ण हरे कृष्ण महामंत्र में प्रकट हुए हैं। कृष्ण भावना अमृत आंदोलन जंगल की आग की तरह सारे विश्व में फैल रहा है और इसी तरह फैलता रहेगा। कंस जैसे व्यक्ति इस आंदोलन की प्रगति से तथा तरुण पीढ़ी द्वारा इसकी स्वीकृति से भयभीत हैं, किंतु जिस तरह कृष्ण को कंस नहीं मार पाया उसी तरह यह आंदोलन कंस सरीके व्यक्तियों के रोके नहीं रुकेगा। यह आंदोलन अधिकाधिक बढ़ता रहेगा। यदि इस आंदोलन के नेता विधि विधानों का पालन करते हुए और हरे कृष्ण महामंत्र का नियमित कीर्तन करते हुए कृष्ण भावना भावित बने रहें।
अनुवाद दोहराइए,
सभी भक्त अनुवाद दोहराइए। गर्भ में भगवान के होने से देवकी जिस स्थान में बंदी थी वहां के सारे वातावरण को वे आलोकित करने लगी। उसे प्रसन्न शुद्ध तथा हसमुख देखकर कंस ने सोचा, इसके भीतर स्थित भगवान विष्णु अब मेरा वध करेंगे। इसके पूर्व देवकी कभी भी इतनी तेजवान तथा प्रसन्न नहीं दिखी।
ओम ज्ञानं मेन्दस्य ज्ञानञ्जनाश्वकय चक्षुर्मिलितानि येन श्रीचैतन्यमनोव्यस्तं साविधामेन जय श्री कृष्ण चैतन्य हरे हरे कृष्ण। तो आप पे इस समय भागवतम का 10वां स्कंद पढ़ रहे हो, जिसमें जिस अध्याय में देवताओं की उपासना का वर्णन भी है। पिछले 3 श्लोकों में आपने पढ़ा है कि भगवान प्रकट होने वाले हैं। जन्म कर्म चामे भगवान गीता के 4 अध्याय में भगवान कहते हैं मेरा जन्म लेना, प्रकट होना और प्रकट होना दोनों ही क्या है? दिव्यम। दिव्यम का अर्थ है कि भौतिक कार्यों के द्वारा नहीं, और परम भगवान के माता पिता वासुदेव देवकी, उन्होंने 12,000 देवताओं के वर्षों के लिए इतनी गहरी तपस्या उठाई कि आप उसका अंदाजा भी लगा सकते। 12,000 देवताओं के वर्षों के लिए वासुदेव देवकी ने कुछ नहीं खाया, केवल पत्ते जो गिरते थे पेड़ों से और जो हवा है उसको इनहेल किया और दिन रात उनका चिंतन ये था कि परम भगवान प्राप्त हो पुत्र के रूप में. तो परम भगवान प्रकट हुए कैसे? वासुदेव के हृदय से देवकी के हृदय में. साधारण स्थिति में जिस प्रकार जन्म लिया जाता है उस प्रकार उनका जन्म नहीं था. वासुदेव के हृदय से देवकी के हृदय में. और यहाँ बताया जा रहा है कि जब भगवान देवकी के हृदय में थे उनके चेहरे से इतना तेज था, इतनी खूबसूरती थी, इतनी सुंदरता थी कि कंस ने समझ लिया हाँ परम भगवान इनके घर में है. और कंस को सदा चिंता थी किस विषय की. उन्हें पता था कि बिना अगर वध होगा तो किसके हाथ? कृष्णा के हाथ. तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी अनेक महत्वपूर्ण विषयों की चर्चा कर रहे हैं और खास करके इस तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने बड़े गहराई के साथ प्रचार की महिमा का भी गुणगान किया है. तो परम भगवान का प्रकट होना और प्रकट होना दोनों ही दिव्यम है. और अगर हम इसे समझना चाहें तो भौतिक प्रयास द्वारा यह संभव है. अथाश कृष्ण नमादिना वेद ग्रह इंद्रिया है से वो मुके ही जीवा दो. अगर आप भगवान को समझना चाहते हो तो आप अपने भौतिक प्रयास के द्वारा नहीं समझ सकते. तो कैसे समझ सकते हो? शास्त्रों का क्या है वर्णन? सेवा मुके जी, सेवा के माध्यम से. कई लोग, अगर आप आज के वातावरण में किसी को बोलो भगवान प्रकट हुए वासुदेव के हृदय से देवकी के हृदय में, कोई कहेगा ये तो पागल है, ये कभी संभव हो सकता है? जैसे कि जब कोई नसीदे भगवान की तस्वीर देखता है, बहुत एक बात व्यक्ति को यह असंभव है. कैसे संभव है? आधा पुरुष आधा पशु. तो भगवान को समझ के लिए सेवा की आवश्यकता है और भक्तियों के माध्यम से हम हमारे अशुद्ध इंद्रियों को क्या करते हैं? शुद्ध कर शुद्ध शुद्ध बनाते हैं. तो परम भगवान प्रकट हुए और जब भगवान प्रकट हुए अपने माता पिता के समक्ष तो किस रूप में थे? साधारण समाज में जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो वो रोते हुए माता के गर्भ से निकलता है. नहीं रोए तो चिंता में हो जाते हैं, रोते आता है. परम भगवान जब प्रकट हुए अपने दिव्य रूप में, उनका शरीर सजावादा गहनों के साथ, हीरे मोतियों के साथ और बड़े सुंदर वस्त्र में थे. भगवान अपने माता पिता को यकीन दिलाना चाहते थे कि अब मैं प्रकट हुआ हूँ. इससे पहले उनके बड़े भाई प्रकट हुए थे और उससे पहले 6 बेटे प्रकट हुए थे देवकी के, जिनका वध कर दिया था. किसने? एक रूप से ये कहा गया है हमारे आचार्यों के द्वारा कि अगर आप परम भगवान को समझना चाहते हो तो हमें जो हमारे भौतिक आकर्षण है, जो भौतिक विषयों की रुचि है, उसे समाप्त करना पड़ेगा. ये जो 6 बेटे मारे गए उन्हें ये भी उनके विषय में ये भी कहा जाता है अगर हम काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य इनका वध करेंगे फिर हम भगवान को समझ सकेंगे. जब तक इन अनर्थ का प्रभाव रहेगा हमारे ऊपर हम भगवान को नहीं समझ सकते. इसलिए भगवान के प्रकट होने से पहले इन पुत्रों का वध किया और संतों के अनुसार इसकी तुलना की जाती है ये छह अनर्थ के द्वारा। काम भगवद गीता में भगवान ने अर्जुन ने पूछा क्या कारण है कि जानते हुए हम गलत कार्य कर बैठते हैं, हम जानते हैं गलत है, तो भगवान क्या कह रहे हैं काम है इसे क्रोध से राजगुण से मुझ बाबा। और भगवान आगे ये भी कहते हैं कि जो शत्रु है आध्यात्मिक जीवन का इसका निवास का स्थान कहाँ है, कहाँ है निवास का स्थान, मन बुद्धि इंद्रियों में। आगे भगवान ये भी कहते हैं ज्ञान के तलवार से इसका वध करो। तो कहा फिर क्रोध, क्रोध भौतिक कार्यों के लिए होता है और आध्यात्मिक कार्यों के लिए। अक्सर समाज में हम क्रोधित हो जाते हैं जब हम भौतिक इच्छाओं को पूरा नहीं कर सके, है कि नहीं, और ये क्रोध भारी बोझ है। भगवान गीता में ये भी कहते हैं तीन रास्ते मार्ग हैं जिनके द्वारा आप नरक में पहुंचोगे, कि क्या है काम क्रोध लोभ। तो क्रोध का उपयोग होना चाहिए केवल जब कोई आध्यात्मिक विषय हो। उदाहरण के लिए चैतन्य महाप्रभु ने तो शिक्षा दी थी सिद्धांत भी सुनी चेना की तुरूपी सही सुना हमारे ना मना देना कितने दी सदा हरी। अगर तुम हरी का नाम लेना चाहते हो तो संक्षेप में विनम्र होना चाहिए। तो यही चैतन्य महाप्रभु ने जब देखा कि मधाई ने पत्थर फेंका जिससे भगवान नित्यानंदा के माथे से खून बहने लगा, वो क्रोधित होकर वहां पहुंच गए थे अपने किसके साथ सुदर्शन चक्र के साथ। तो क्रोध का उपयोग करना चाहिए केवल जब कोई भगवान के भक्तों का अपराध करे या भगवान के प्रचार में किसी का बंधन डाले किसी रूप से। लोभ एक और समस्या है, लोभ। वामन देव जी कहते हैं आठवें स्कंद में कि जिस व्यक्ति ने मन और इंद्रियों को वश में नहीं किया उसे आप कभी भी संतुष्ट नहीं कर सकते। वामन देव भगवान बाली महाराज के यज्ञशाला में पहुंचे थे, बाली महाराज ने उनका बड़ा स्वागत किया उत्साह के साथ और कहा पूछा मेरे से मांगो क्या मांगना चाहते हो। वामन देव भगवान थे पर ब्राह्मण बालक के रूप में। भगवान ने कहा अगर मुझे कोई देना चाहते हो उतना स्थान दे दो जाके मैं तीन कदम रख सकूं। और बाली महाराज ने कहा बस इतने बड़े व्यक्ति के पास पहुंचकर इतनी छोटी भेंट मांग रहे हो, ऐसे और मांगो। फिर वामन देव ने कहा जिस व्यक्ति ने मन और इंद्रियों को वश में नहीं किया उसे आप सारे विश्व का धन दोगे तो भी वो संतुष्ट नहीं रहेगा, और जिसने मन बुद्धि इंद्रियों को वश में कर लिया वो व्यक्ति हर स्थिति में संतुष्ट रहेगा। तो लोभ हम हमेशा प्रयास करते हैं और पर आप भौतिक समाज में किसी स्थिति में संतुष्ट नहीं हो सकते। पर अगर आप आध्यात्मिक मार्ग पर चल रहे हो तो हर स्थिति में संतुष्ट रहोगे। प्रभुपाद जी उदाहरण देते थे कि वृंदावन के गोस्वामी थे रूप और सनातन, एक समय उनका समाज में इतना ऊंचा स्थान था कि धन की कोई कमी नहीं थी, लगभग प्रधानमंत्री के समान थे। और जब उन्होंने सब कुछ त्यागा और ब्रज में गए तो मधुकरी करके जी रहे थे रघुनाथ दास गोस्वामी, उस समय के करोड़पति पिता के इकलौते पुत्र थे। पर जब वो वृंदावन में आए मधुकरी करके जी रहे थे और संतुष्ट थे। तो लोभ जो है उसे कभी समाप्त नहीं होता। अगर आप आध्यात्मिक क्षेत्र में हो तो हर स्थिति में संतुष्ट रहोगे। मोह मद मत्सर्य। दूसरे अध्याय में गीता के अर्जुन ने कहा मुझे ये नहीं समझ आ रहा मेरा क्या कर्तव्य होना चाहिए, शिक्षा दीजिए मुझे, मैं आपके शरणागत हूँ। भगवान ने उपदेश देना आरंभ किया और फिर 18वें अध्याय में पूछा क्या तुम्हारी अज्ञानता दूर हो गई है। अर्जुन ने कहा हाँ अब मैं मोह अज्ञानता दूर हो गई, अब मैं आपके आदेश के अनुसार कार्य करने को तैयार हूँ। तो ये जो मोह है इसे भी हमें दूर करना है। मद और मत्सर्य ये भी और कमियां हैं। तो इन दोषों को अनर्थस को इनका हमने वध करना है। इनका वध होगा कैसे? भक्तियों के द्वारा। तो परम भगवान प्रकट हुए अपने दिव्य रूप में और जब माता पिता ने देखा ये वो समझ गए भगवान प्रकट हुए हैं। माता पिता ने क्या कहा? आप अभी साधारण बच्चे का रूप ग्रहण कर लो। और उन्होंने तुरंत ही साधारण बच्चे का रूप ग्रहण कर लिया। उनके पिता इतने प्रसन्न थे ये जानकर कि परम भगवान प्रकट हो चुके हैं कि उन्होंने मन ही मन में 12,000 सजीव गायों को दान में दे दिया। कभी अब अगर ऐसी स्थिति में हो जहाँ की शारीरिक रूप से सेवा नहीं कर सकते तो मन ही मन में कर सकते हो। वासुदेव कैदी थे तो संभव नहीं था कि वो भेज दें ब्राह्मणों को, तो उन्होंने मन ही मन में सोच लिया मैंने 12,000 गायों दे दी किसे? ब्राह्मणों को दान के रूप में। भक्ति रसामृता सिंधु में आप कथा पढ़ते हो, एक समय एक गरीब ब्राह्मण था जो कथा सुन रहा था कि अगर आप ऐसी स्थिति में हो जहाँ की आप सेवा नहीं कर सकते तो मन ही मन में सेवा कर लो। तो इस ब्राह्मण ने मन ही मन में एक सुंदर मंदिर बना लिया, भगवान की स्थापना की और मन ही मन में रोज दिन में 8 बार आरती करता था, भोग लगाता था और स्वयं जाता था पवित्र नदियों में जल लाने के लिए भगवान का अभिषेक करे। तो इस प्रकार वो और बड़ा भंडारा बनाता था हर आरती के लिए। तो इस प्रकार कई सालों उसने सेवा की मन ही मन में। एक दिन देखना चाहता था जो खीर बनाई है भगवान के लिए वो ठंडी हुई है कि नहीं। खीर पहले गर्म बनाते हैं फिर ठंडे होने पर भगवान को भोग लगाते हैं। और जब उसने अपनी उंगली डाली खीर में देखने के लिए कि जो ये जले ये खीर ठंडी हो गई कि नहीं, उसकी उंगली जल गई। जब जल गई वो आश्चर्य हो गया था कि वो तो मन ही मन में सेवा कर रहा था और भगवान ने एक खास रथ भेजा उसे अपने धाम में लाने के लिए, मन ही मन में सेवा कर रहा था। तो भगवान गीता में क्या कहते हैं? मन मन भाव मन भक्त हो मन जाजी मन नमस्कुर मान वाचे सत्यम थे पति जन पर मेरा मन द्वारा मेरा चिंतन करो, मेरी उपासना करो, मेरा भक्त बनो। तो भगवान ने माता पिता के कहने पर साधारण बच्चे का रूप ग्रहण कर लिया। तो इस तात्पर्य में प्रभा जी कह रहे हैं यदा यदा ही धर्म संग्रहणी भवति भारत विधर्म धर्म से तदात्मा नाम जामे। भगवद गीता में भगवान इतिहास देते हैं, वो अलग अलग समय में प्रकट होते हैं। और जैसे हमने संक्षेप में कहा भगवान का प्रकट होना हमारे जन्म लेने में दिन रात का अंतर है और भगवान अपनी इच्छा से ही अपने भक्तों को माता पिता के रूप में स्वीकार करते हैं। आप और हम जन्म लेते हैं कर्मों के आधार पर, तो परम भगवान जन्म लेते हैं अपनी इच्छा के अनुसार और अपने भक्तों को ही माता पिता के रूप में स्वीकार करते हैं। भगवान क्यों प्रकट होते हैं, कौन बताएगा क्यों प्रकट होते हैं? पाए तनाया साधु नाम बिना चिंता दुष्कृत धर्म संस्थापनाथाया समाप्त। मैं होता हूँ धर्म की स्थापना के लिए। धर्म का अर्थ है भगवान की वाणी। तो प्रभा जी तात्पर्य में कह रहे हैं कि इस कलयुग में जो मानव जीव हैं वो ये नहीं समझते कि जिंदगी का क्या लक्ष्य होना चाहिए। और प्रभा जी कह रहे हैं ये नहीं समझते कि जिंदगी का क्या लक्ष्य होना चाहिए। ये पूरा तात्पर्य प्रभा जी का निर्भर है इसी विषय पर कि लोग बड़ी गहरी अज्ञानता में है। आज समाज में बहुत कम स्थान है जहाँ की आपको ये शिक्षा दी जाती है कि जीवन का क्या लक्ष्य होना चाहिए। ये बात सच है। बड़े महाविद्यालय हैं, क्या वहाँ कोई ऐसा विभाग है जहाँ ये शिक्षा दी जाती है? आप हो कौन? तो तात्पर्य में प्रभा जी कह रहे हैं लोग अज्ञानता में हैं, पशु के समान जीवन को बिता रहे हैं। एक बड़े प्रसिद्ध भक्त ने कहा है, मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण भाजिया जानिया शून्या पीछा गायन। मनुष्य जन्म तो प्राप्त कर लिया मैंने, पर राधा कृष्ण का भजन नहीं किया। मैं जानवर से क्या पी रहा हूँ? जहर पीछा। और आज समाज की स्थिति ऐसी है, आप कहो लोगों को जहर पी रहे हो, हम आपको अमृत देने आए हैं, वो क्या कहते हैं? पीने दो जहर। क्या क्या जाए। तो साथ में प्रभा जी कह रहे हैं कि भगवद गीता का संदेश समाज के लिए बहुत आवश्यक है। और आगे प्रभा जी कह रहे हैं कि भगवान ने जन्म लिया है इस संस्था के घर में। ये बड़ा है, भारी स्टेटमेंट प्रभा जी दे रहे हैं। प्रभा जी कह रहे हैं देखो कृष्णा हैज टेकन शेल्टर, एक मिनट, देखो कृष्णा हैज टेकन बर्थ और टेकन शेल्टर विद इन द वूम ऑफ द कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट। तो प्रभा जी कह रहे हैं इस संस्था में, इस संस्था के घर में भगवान परम भगवान ने जन्म लिया है। दूसरे शब्दों में इसका अर्थ यह है कि संस्था में जो प्रचार की सेवा है वो है भगवान का संदेश। आप इस संस्था में देखोगे, चाहे आप किसी कोने में जाओ, आपको गीता भगवत का संदेश दिया जा रहा है। और ये संदेश और भगवान जो हैं अभिन्न है। जैसे हम भगवद गीता बांटते हैं, भगवद गीता में क्या है? श्री भगवान वाचा, परम भगवान बोल रहे हैं। और किसका संदेश है? भगवान का संदेश। भगवान के संदेश में कोई अपूर्ता नहीं, कोई दोष नहीं, किसी प्रकार की कमी नहीं। यह है सनातन संदेश। उदाहरण के लिए जो गीता का संदेश हम पढ़ते हैं, बांटते हैं, ये तो बड़ा प्राचीन संदेश है। भगवान चौथे अध्याय में इतिहास देते हैं गीता का, एवं परंपरा प्रथमान राजस्व। ज्ञान सबसे पहले मैंने दिया था किसे? सूर्य के देवता विवासवान। तो ये बड़ा प्राचीन ज्ञान है। और ये ज्ञान क्योंकि परम भगवान द्वारा प्राप्त होता है, इसे हम एक और नाम से पुकारते हैं, सनातन धर्म। ये सनातन संदेश है। और हम ये नहीं कह सकते ये संदेश में, इस शिक्षा में ये कमी है, ये संदेश आज के आधुनिक युग में लागू नहीं हो सकता। प्रभा जी की भगवद गीता का अनुवाद लगभग 80 भाषा में हो गया है और सारे विश्व में लोग गीता पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसमें हर प्रश्न का उत्तर है, हम समझ सका। तो यहाँ कह रहे हैं प्रभा जी कि ये जो कृष्ण भक्ति है तेजी के साथ फैल रही है। प्रभा जी उदाहरण देते हैं, कह रहे हैं जंगल में जिस प्रकार आग लगती है तो जंगल की आग बहुत तेजी से बढ़ती आ गया है ना, उसी प्रकार प्रभु जी कह रहे हैं इस संस्था का प्रचार बहुत तेजी से फैल रहा है। पर कई लोग विरोध भी करते हैं, ये नहीं कि इसका कोई विरोध नहीं करता। जब चैतन्य महाप्रभु ने अपना संकीर्तन आंदोलन आरंभ किया, कईयों ने विरोध किया। चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है, पहले वो थे नवद्वीप में, वो फिर जब उन्होंने प्रचार आरंभ किया, कईयों ने विरोध किया। उसमें कई थे हिंदू ब्राह्मण। आप कहोगे इन ब्राह्मणों ने क्यों विरोध किया, क्योंकि ये जो ब्राह्मण थे ये यज्ञ द्वारा पैसा कमाते थे। और महाप्रभु ने क्या संदेश दिया, हरिनाम 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 एव केवलम कलो न सेवा न सेवा। इसमें कोई यज्ञ की जरूरत नहीं, कोई पंडित की जरूरत नहीं, कोई धन की आवश्यकता नहीं। ये जो पंडित थे इसमें उनकी आमदनी एकदम समाप्त हो गई, सब ने हरिनाम को स्वीकार कर लिया। उन्होंने जाकर काजी को कहा, ये निमाही ने कोई नया धर्म सुनना शुरू किया है, ये तो हमने कहा पढ़ा ही नहीं हरिनाम का उच्चारण। और साथ में जो मुसलमान थे उन्होंने भी विरोध किया, उन्होंने कहा कि अगर हम इसके हरिनाम को नहीं रोकेंगे तो सारे मुसलमान हिंदू बन जाएंगे। उनमें एक मुसलमान था जो बार बार जाता था काजी के पास कि रोको निमाय के संकीर्तन आंदोलन को, नहीं तो सब मुस्लिम हिंदू बन जाएंगे। तो उस काजी ने कहा, तुम सारा दिन आते हो शिकायत करने के लिए, रोको रोको रोको, जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ तुम हरिनाम ले रहे हो, ये क्या तमाशा है। तो उसने कहा, हाँ ये बात सच है, जब से मेरा परिचय हुआ हरिनाम के साथ, हरिनाम जीभ से निकलता ही नहीं। तो कईयों ने विरोध किया। तो उसी प्रकार जब आप प्रचार में जाते हो, कई विरोध करते हैं, कई साथ देते हैं, है कि नहीं। जब महाप्रभु के आदेश पर नित्यानंद हरिदास प्रचार कर रहे थे, कईयों ने तो उनका बड़े उत्साह से स्वागत किया, आओ संत महात्मा हमारे घर आ गए पवित्र बनाने के लिए। तो कईयों ने विरोध भी किया, कईयों ने गाली भी दी। तो प्रभुपाद जी यहाँ कह रहे हैं तात्पर्य में कि कृष्ण भक्ति का प्रचार आग की तेजी के साथ चल रहा है, कोई इसे रोक नहीं सकेगा। विरोध करेंगे लोग पर रोक नहीं सकेगा। तो जब आप प्रचार करते हो आपका क्या अनुभव है, आपका भी ये अनुभव है, कई साथ देते हैं कई साथ नहीं देते। और पर जो भक्त हैं वो इसे घबराते नहीं हैं। कई बार भक्त कहते हैं, अगर हम निकलते ही लोग भागे भागे आए गीता के लिए, वहाँ उत्साह बहुत बढ़ जाता है। और जब हमें कई घंटे लगाने पड़ते हैं, कोई सुसाथ नहीं देता, तो जरा डिस्करेज हो जाते हैं। सच बात है, कई बार लोग पर जैसे मैंने पिछली दफा कहा था, भगवान देखते हैं आप कितना समय दे रहे हो, कितना प्रयास कर रहे हो, भगवान उसके लिए भारी हो जाते हैं। गीता के 18वें अध्याय में भगवान क्या कहते हैं, सब भक्त में सबसे प्रिय कौन है, जो मेरा प्रचार करता है। तो ये प्रचार की सेवा प्रभुपाद जी तात्पर्य कह रहे हैं बहुत आवश्यक है, किस लिए, बद जीवों को बुद्धि देने के लिए। वास्तव में विप्रा एक भक्त थे महाप्रभु के, जिन्हें कोढ़ की बीमारी थी, उनका पूरा शरीर फुंसियों के साथ भरा हुआ था, और महाप्रभु ने उन्हें गले लगाया, उनका बदसूरत शरीर खूबसूरत बन गया, सुगंधित युवक बन गया, खूबसूरत युवक। तो उनके मन में एक भय था, उन्होंने कहा, पहले तो हमें बदसूरत था, वो मेरा शरीर फुंसियों से भरा हुआ था, कोई मेरे निकट भी नहीं आता था, अब आपकी दया से इतना खूबसूरत बन गया हूँ, मेरे मन में गर्व गौरव नहीं आ जाए, घमंड नहीं आ जाए। तो मैं विनम्र रहने के लिए क्या करूं? हाँ, प्रभु ने कहा हरि नाम का उच्चारण करो, हरि नाम के शिक्षा का प्रचार करो, गीता का अध्ययन करो, गीता का वचन करो, इस प्रकार तुम सदा विनम्र भाव में रहोगे। और प्रभा जी आगे कहते हैं कि जिस प्रकार महाप्रभु ने वासुदेव विप्र का उद्धार किया, उसी प्रकार इस संसार के प्रचार से कई लोगों का उद्धार हो रहा है। हमें भी दूसरों को ये शिक्षा देनी चाहिए जैसे हमें प्राप्त हुए। हम सब आज जुड़े हैं भक्ति में, पर अगर आप ध्यान से देखो कैसे आप जुड़े हो, एक साधन है, किसी ने आपको निमंत्रण दिया, आप मंदिर आए, कॉलेज में ऐसे प्रोग्राम में गए, आप भक्त थे। दूसरा है किसी ने आपको ग्रंथ दिया। दो साधन है साधु संगत के, एक है भक्त साधु और दूसरा है ग्रंथ साधु। भक्त साधु उपदेश देता है, ग्रंथ साधु ग्रंथों के माध्यम से आपको संदेश देते हैं। इन ग्रंथों में है क्या? भगवान का संदेश। हम कहते हैं प्रभुपाद जी के पुस्तक, पर प्रभुपाद जी के पुस्तक का अर्थ क्या है? अर्थ ये है कि भगवान का जो उपदेश है वो यथारूप प्रस्तुत किया गया है। और आज हजारों उदाहरण है, लाखों उदाहरण है कि इन ग्रंथों के माध्यम से लोगों का आध्यात्मिक जीवन कैसे आरंभ हुआ। तो भक्तों का ये भाव रहता है, जैसे प्रभु जी कह रहे हैं कि प्रचार के माध्यम से हम लोगों को जोड़ सकते हैं, किस में? भक्ति के मार्ग में। आगे प्रभु जी कहते हैं कली काले नामा रूपा कृष्ण अवतार, ये प्रसिद्ध श्लोक चैतन्य चतुर्मिता के आदि लीला के 7वें 17वें अध्याय से है। कली काले नामा रूपा कृष्ण अवतार, इस कलियुग में भगवान अवतारित होते हैं कैसे? उनके दिव्य नामों के माध्यम से। तो ये ज्ञान कहाँ से मिलेगा? ग्रंथों के द्वारा। श्रीमद् भागवतम के 12वें स्कंद में कलियुग के लक्षणों का वर्णन है। तो ये पूछा गया था कलियुग में लोगों का उद्धार कैसे होगा, और 12वें स्कंद में आप पढ़ते हो कलियुग का एक लक्षण है आध्यात्मिकता में बहुत कम रुचि, लोग आलसी हैं, सुस्त हैं। तो शुक्रदेव गोस्वामी ने कहा उत्तर में, कले दोषे निधि राजन, इस कलियुग में क्या है? दोष ही दोष, यहाँ देखो वहाँ आध्यात्मिक भौतिक क्षेत्र का निमंत्रण। अस्य एका महागुणा, तो अस्ति एक महागुणा, एक गुण है क्या? कीर्तन देव कृष्ण से मुक्त संघ से परम कृष्ण का कीर्तन। तो ये हरि नाम की महिमा कहाँ से प्राप्त होगी? इन ग्रंथों के माध्यम से हरि नाम की महिमाओं का कहीं ज्ञान कहाँ मिलेगा? ग्रंथों में। और इस तात्पर्य में प्रभु जी ने ये भी कहा, लोग ज्ञान में हैं अपने स्वरूप के विषय में, अधिकतर लोग क्या सोचते हैं? ये ध्येय हमारा स्वरूप है, और ध्येय त्यागने पर सब समाप्त हो जाएगा। पर जिसके बाद आध्यात्मिक ज्ञान है वो क्या समझता है? कि आत्मा सनातन है, देह नश्वर है। तो ये ज्ञान कि हरि नाम के माध्यम से आप भगवान के शरणागत हो सकते हो, ये ज्ञान कहाँ है? शास्त्र में। तो ये हरि नाम की महिमा का ज्ञान है शास्त्र में। श्रीमद् भागवतम में 12 स्कंद हैं, 535 अध्याय हैं, 18,000 श्लोक हैं, और इन सब के द्वारा क्या संदेश मिल रहा है? हरि नाम को अपनाओ, ये है कलियुग में सबसे सरल मार्ग। आगे 12वें स्कंद में कहा गया है कृतय अध्याय तो वैष्णव कृष्ण के सतयुग में भगवत प्राप्ति का साधन क्या था, भगवान का चिंतन। त्रेता युग में भगवत प्राप्ति का साधन क्या था, बड़े बड़े यज्ञ। द्वापर युग में क्या था साधन, भगवान के चरण कमल में भेंट, महंगी महंगी भेंट। वही लाभ इस कलयुग में प्राप्त हो सकता है हरिनाम के माध्यम से। तो यह हरिनाम की महिमा का ज्ञान का वितरण बहुत आवश्यक है। और यह किसमें प्राप्त होगा, इन ग्रंथों में। तो आप सबको बड़े उत्साह के साथ इस प्रचार के सेवा में जुड़ना चाहिए। ये परम भगवान की असीम कृपा है, प्रभुपाद जी की असीम कृपा है कि हमें इस प्रचार में मिलने का मौका मिल रहा है। और प्रभुपाद जी अनेक तात्पर्य में इसी विषय की स्थापना कर रहे हैं, क्या कि हमें भगवान के संदेश का क्या करना चाहिए, प्रचार। महाप्रभु ने क्या कहा, जाए दाखो ताए कहो कृष्ण उदय। तो कृष्ण का उपदेश दोगे, लोग सुनेंगे और भूल जाएंगे, पर ग्रंथ दोगे, ग्रंथों को पढ़ेंगे तो उसको नहीं भूलेंगे। प्रभुपाद जी ने कहा, एक श्लोक को ही अब ध्यान से पढ़कर आप निर्णय कर लो अपने जिंदगी में अपनाना है, आपका जीवन सफल हो जाएगा। तो आप सबसे विनती है, उत्साह के साथ जाइए प्रचार में। रूप गोस्वामी कहते हैं, उत्साह निश्चय धैर्य। आप कोई भी सेवा करना चाहो उत्साहित होना चाहिए, ये तो भगवान की सेवा है। तो आप सब जुड़िए इस प्रचार में। आप एक कितने भक्त समय मैराथन की सेवा कर रहे हो, कई विद्यार्थी भी हैं इस सभा में, इस प्रचार की सेवा में कीजिए। प्रभा जी क्या कह रहे थे, अगर तुम मुझे प्रसन्न करना चाहते हो तो क्या करो, क्या करो, ग्रंथों का वितरण। आप सब जुड़िए इस सेवा में। आज लोग दुखी हैं, चिंता में हैं, क्लेश है, और इन सब समस्याओं का हल है क्या, हरिनाम का उच्चारण। परिणाम का उच्चारण क्यों किया जाए, वो ज्ञान कहाँ प्राप्त होएगा, ग्रंथों में। हमें ग्रंथों को पढ़ना है और प्रचार करना है। और प्रभा जी तात्पर्य की समाप्ति में एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश दे रहे हैं। प्रभा जी कह रहे हैं, जब तक इस संस्था के भक्त शास्त्रों के शिक्षा के आधार पर कार्य करेंगे जब तक सफलता प्राप्त होगी, और अगर हम शास्त्र के आधार पर नहीं करेंगे तो सफलता प्राप्त नहीं होगी। सनातन गोस्वामी हरिदास ठाकुर के दर्शन लेने के लिए रोज आते थे। उन्होंने कहा, हरिदास कईयों का आचार है प्रचार नहीं, कई प्रचार करते हैं उनका आचार नहीं। आप में दोनों ही गुण है, क्या आचार भी और। तो ये होना चाहिए हमारा लक्ष्य, हमारा आचार भी हो तो फिर प्रचार का ज्यादा गहरा प्रभाव पड़ेगा। पर अगर हम बोलेंगे कुछ, करेंगे कुछ, तो लोग क्या कहेंगे, ये तो ढोंगी आदमी दिखता है। तो प्रभाव चाहते थे इस संस्था में हमारा आचार भी हो और अब सब ये दो भावों को अनुकूल कीजिए। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है तो सब जुड़ोगे मैराथन में, 5 मिनट।
हरे कृष्णा महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने संक्षिप्त में इतना अच्छा मैसेज दिया। आपने कहा कि अर्जुन ने गीता सुनी और अर्जुन का मोह नष्ट हो गया, बट हम इतने सालों में देखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, गीता सुनी, गीता पढ़ी, गीता बांट दी, गीता पे लेक्चर भी दे दिया, बट मोह अभी भी वहीं पे बना हुआ है महाराज।
इसलिए कहा गया है, ट्राई एंड ट्राई अगेन, यू विल सक्सीड एट लास्ट। प्रयास करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। रोज भगवतम पढ़ो, रोज गीता पढ़ो, और अगर आप इन दो ग्रंथों को नियमित रूप से रोज पढ़ोगे परिणाम के साथ साथ अवश्य ही आपका मोह और अज्ञानता नष्ट हो जाएगा। गारंटी। हाँ, और कोई प्रश्न?
कृष्ण, हरे कृष्ण महाराज, आप कथा में बताएं कि भगवान बोलते हैं कि हमको क्रोध आता है क्योंकि हमारा भौतिक इच्छाएं बहुत होती है हमारे पास, तो भौतिक इच्छाएं कि होती हैं तो हमको क्रोध भी आता है, तो क्रोध आसपास हम डिवोटीज के सर्कल में रहते हैं तो उससे वैष्णव अपराध हो जाता है, तो महाराज वैष्णव अपराध से कैसे बचें और भौतिक इच्छाओं को कैसे कम करें, ये कारण इस पे।
भौतिक इच्छाओं का वध करने का एक ही उपाय है, वो है वैदिक भक्ति का पालन। वैदिक भक्ति का अर्थ है नियमों का पालन, जैसे आप देखते हो हम लोग मंगल आरती में आते हैं, ये आते हैं क्लास में आते हैं, इन विधियों का पालन करोगे तो आध्यात्मिक शक्ति बढ़ेगी, आध्यात्मिक शक्ति बढ़ेगी तो बौद्धिक शक्ति घटेगी, पर आध्यात्मिक शक्ति नहीं बढ़ेगी तो बौद्धिक शक्ति बढ़ते जाएगी। तो ये जो सिद्धांत जो कि प्रभुपाद जी ने दिया है वो हमें 100% उसका पालन करना चाहिए। और भगवान क्या कहते हैं, देवी ऐसे गुणमाय माया दृढ़ मामे वामे प्रबदंते माया मिताम, मेरी माया का विरोध करना बहुत मुश्किल है। तो आप कहोगे तो भगवान स्वयं कह रहे हैं मुश्किल है, हमारे क्या उम्मीद। आगे भगवान ये भी कहते हैं क्या, अगर तो मेरे ही शरण में आओगे, मेरे शरण में आने का अर्थ क्या, उनकी शिक्षा का पालन। भगवान कहते हैं सर्वधर्म पढ़ता जा, उसका अर्थ क्या है, भगवान की शिक्षा का पालन। अगर हम शिक्षा का पालन करेंगे तो फिर बिना शंका के इसका विरोध कर सकेंगे। ये उपाय हजारों सालों से आ रहा है, ये कोई नई दवाई नहीं है, ये तो बहुत प्राचीन दवाई है। ओके, और कोई? यस,
हरे कृष्णा महाराज, आपने बहुत अच्छा बताया कि सेवन मुखे ही जिह्वा दो, सेवा भाव से हरि नाम और भगवान के सभी प्रकाशित होंगे हमारे हृदय में। तो सेवा भाव बना नहीं रहता है महाराज, कभी ऊपर रहता है सेवा भाव, कभी नीचे चला जाता है,
कभी उत्साह बढ़ जाता है कभी उत्साह घट जाता है। इधर भाई, हाँ, प्रश्न ये है क्यों घटता है, मैं इच्छा तो रहती है हमेशा बढ़ते जाए, आप देखते कि हमेशा नहीं बढ़ता। ये निर्भर है फिर से आपके साधना और प्रयास के ऊपर। अगर आप नियमित रूप से जाप करोगे, पढ़ोगे, सेवा करोगे तो बिना शंका के ये उत्साह बढ़ते जाएगा, पर बीच में आप छूट ले लेते हो उसमें समस्या आती है। आप दवाई ले रहे हो, इलाज हो रहा है अच्छी तरह, फिर आप कहते चलो अभी दवाई की जरूरत नहीं, तो क्या होता है रिलैप्स, फिर से बीमारी हो जाती है। तो हमें शॉर्टकट नहीं लेना चाहिए और छूट नहीं लेनी चाहिए। बस ठीक है, ओके, और कोई प्रश्न? या
हरे कृष्ण महाराज जी, हमने कथा में सुना कि सनातन गोस्वामी हरिदास ठाकुर जी को बताया कि आपके अंदर दोनों वस्तु है, आप आचरण भी करते हैं और आप प्रचार भी करते हैं। तो जब हम लोग प्रचार करते हैं तो हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा कि हम लोग जो आचरण में हमारे ले, ताकि हम लोग जो प्रचार करते हैं उसका दूसरों पे प्रभाव भी पड़े और हम लोग अच्छे से प्रचार भी कर सके।
जब आप प्रचार कर रहे हो किसी को, मान लो आप किसी व्यक्ति को सड़क में रोक रहे हो, कृपा करके गीता लीजिए, उस वक्त हमारा भाव ही होना चाहिए। अगर परम भगवान के माध्यम से आप निमित्त मात्र बन जाओ गीता देने के लिए, तो इस व्यक्ति का उद्धार हो जाएगा, उसकी भक्ति आरंभ हो जाएगी, फिर वो आस्ते आस्ते भक्ति में बढ़ते जाएगा। और क्या था अच्छा दूसरा प्रश्न?
हम लोग क्या आचरण में लाना चाहिए ताकि हम लोग अच्छे से प्रचार,
आचरण अच्छा रखोगे जैसे प्रभुपाद तात्पर्य में कह रहे हैं, विधियों का पालन करोगे तो फिर आध्यात्मिक शक्ति आएगी प्रचार करने के लिए। प्रचार करने के लिए आध्यात्मिक बल चाहिए, वो बल आता है हरि नाम के सहारे। ये कोई भौतिक कार्य नहीं है, यह आध्यात्मिक कार्य है। पापा जी कहते थे प्योरिटी इज द फोर्स, पवित्रता ही शक्ति है। तो पवित्रता कैसे आती है? ये सारे जाप करने से, पढ़ने से वगैरह। शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होगी, आपके विचार में दम रहेगा। ठीक है, ओके। और कोई प्रश्न? लास्ट क्वेश्चन। हाँ,
बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एंथुसियाज्म कैसे आते हैं?
क्या
मतलब बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते वक्त एंथुसियाज्म लो हो जाता है?
बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते वक्त उत्साह कम हो जाता
है एंथुसियाज्म?
कई बार भक्त कहते हैं अगर तो कोई लड़े हमारी किताब लेने के लिए फिर तो उत्साह रहता है। कई बार आपको थोड़ा संघर्ष करना पड़ता है क्योंकि ये है माया का राज्य। भक्त हमें हर स्थिति में उत्साहित होना चाहिए, चाहे कोई ले किताब या नहीं ले किताब। और समाधि, हमारे मन में ये भाव होना चाहिए कि कृपा करके आप माध्यम बन जाओ उस व्यक्ति के का आध्यात्मिक जीवन आरंभ करने में। परम भगवान केवल भाग्यशाली व्यक्तियों को प्रचार की सेवा देते हैं। आप सब जो जुड़े हो अत्यंत भाग्यशाली हो, अभी इसका लाभ उठाओ। ओके, हरे कृष्णा। सब मैराथन में जा रहे हो? हाँ, हरे कृष्णा।